राधा की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री गौरधाय की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। श्री भगवान जी के इस मंदिर में आप सबका स्वागत है। जब इस मंदिर के लिए रूपा जी ने जगह ली थी तब ये जंगल था, पूरा जंगल। यहां से आगे जंगल था और पीछे 2 किलोमीटर के बाद में थोड़ी बस्ती थी भगवान लोगों के रहने की बस्ती। लोगों ने बताया था कि रूपा जी आप इतनी जंगल में क्यों जगह ले रहे हैं, कौन आएगा जंगल में। उस समय करीब करीब 40 साल पहले जब ये जगह लिया गया 71 में, तो उस समय शेर यहां पर रहा करते, शेर और सिंह रहते थे। और यहां से लेकर राधा कुंड तक 28 किलोमीटर रास्ता है। ध्यान सुनना, यहां से लेकर राधा कुंड तक 28 किलोमीटर का रास्ता है। वहां इतना घना जंगल था कि सूरज का किरण कभी भी दिन में जमीन पर पहुंचता नहीं था। फैक्ट पटेल, इतना घना जंगल था कि सूरज का किरण जमीन पर पहुंचा नहीं था। उस समय पर प्रभुपाद जी ने ये जंगल में जगा लिया। ऐसे ये जंगल नहीं है, ये रमण रीति स्थान है। रमण रीति का मतलब है कि जिस रीति में जमुना किनारे वाली जो रेती है, जिस रेती में कृष्ण बलराम विहार करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, उसको कहते हैं रमण रीति। तो कृष्णा एंड बलराम दे हैव फन एंड फ्रॉलिक हियर, दे प्ले हियर, दे हैव एंजॉयमेंट, दे हैव फन। वो भूमि पर रूपा जी ने बड़ी श्रद्धा से जमीन लिया और आज यहां पर इतना जन समुदाय आता है, इतने लोग आते हैं कि सुबह 4:30 बजे मंगल आरती में किसी भी सीजन में आप आओ आपको 500 लोग मिलेंगे। 500 पीपल आर ऑलवेज देयर अटेंडिंग मंगल आरती। और फिर मंदिर के भक्त नहीं, बहुत सारे दिल्ली आगरा के गेस्ट लोग भी रहते हैं। यानी पूरे वृंदावन में कभी भी इतनी सुबह की आरती में इतना भीड़ कभी भी देखा नहीं है आज तक। और आज ये मंदिर 25 साल के बाद में दिल्ली के आगे का एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। और कोई भी लोग यहां पर आते हैं तो बांके बिहारी दर्शन करते हैं। बांके बिहारी बड़े मशहूर ठाकुर जी हैं यहां के, बांके बिहारी की कहानी बताऊंगा मैं अभी आपको। और बिना इस्कॉन दर्शन किए हुए कोई जाता नहीं। और इस्कॉन के मंदिरों में और बाकी मंदिरों में विशेषता विशेष फर्क यह है, सब मंदिर अपने अपने रूप में महान है क्योंकि वो भगवान का स्थान है, भगवान वहां विराजते हैं। लेकिन इस्कॉन के मंदिर में विशेषता यह है कि यहां पर केवल भगवान का दर्शन करने लोग नहीं आते हैं, यहां पर लोग आते हैं तो उनका जीवन परिवर्तित हो जाता है, देयर लाइफ गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड। यहां भक्त लोग जो होते हैं वो केवल दक्षिणा इकट्ठा करने रहते नहीं, प्रचार करते हैं भगवान का संदेश का प्रचार करते हैं। यहां रहते हैं और यहां दूर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, आगरा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लोगों को लेके आते हैं मंदिर में, परिचय कराते हैं वृंदावन धाम का और माला देते हैं भगवान के नाम का, उनका जीवन परिवर्तित कर देते हैं। इट्स अ वाइब्रेंट टेम्पल। वाई वाइब्रेंट? बिकॉज इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द नेम एंड द मैसेज ऑफ द लॉर्ड। बाकी मंदिरों में बहुत अच्छा श्रृंगार होता है, बहुत अच्छी सेवा होती है, ये प्रचार नहीं होता है। क्योंकि भगवान अगर महान है तो उनकी महानता का प्रचार सबके लिए होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है। वो जो उद्देश्य है मंदिर का उद्देश्य क्या है, केवल भगवान की मूर्ति की सेवा करना नहीं, मंदिर का उद्देश्य जहां भगवान की सेवा होती है वहां पर भगवान के द्वारा दिया हुआ संदेश जो है उसका श्रवण होना चाहिए, उसका प्रचार होना चाहिए। क्या भगवान को आपको बताना है वो वहां पर लोगों को पता होना चाहिए, और वो पता होने के लिए भक्त लोग यहां रहते हैं और फिर बाकी आने वाले लोगों को प्रचार करते हैं, बताते हैं। तो उस सृष्टि से बहुत बड़ी संख्या में प्रभुपाद जी के मंदिर में भक्त लोग आते हैं। बाकी मंदिरों में भारत देश के लोग जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के मंदिर में पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, सभी देशों के लोग आते हैं, सभी भाषा के लोग आते हैं। एक एक साथ में इस मंदिर में कभी कभी फेस्टिवल के टाइम पे एक कथा, एक प्रवचन रशिया में रशियन लैंग्वेज में होता है, एक प्रवचन हिंदी में होता है, एक प्रवचन इंग्लिश में होता है। इतने लोग आते हैं हा? तो इतने लोगों के लिए अभी किसी को समझता नहीं, इंग्लिश हिंदी भी समझता नहीं, तो रशियन भाषा में लेक्चर होता है प्रवचन। अधिकतर भारत में हिंदी में प्रवचन होता है, मराठी में होता है, लेकिन इस्कॉन ऐसा देश, इस्कॉन ऐसी संस्था है इसमें देश की 80 भाषाओं में प्रवचन होता है, 80 languages and 80 countries where these languages are spoken, and there are temples and there are प्रवचन्स given on a संस्कृत literature, they are giving प्रवचन on their language। प्रभुपाद जी का जो कमरा है ना आपने देखा, उस कमरे के अंदर एक शोकेस रखा है पीछे, आपने देखा उसके लेफ्ट रूम में जाके, उसमें 80 भाषा में भाषांतर किए हुए पुस्तकों का एग्जीबिशन है उसके अंदर, 80 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, और प्रभुपाद जी ने खुद 80 किताब लिखी है टोटल मिलकर। सबसे उनका बड़ा, सबसे जो बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है भगवद गीता एज इट इज, भगवद गीता जैसी है वैसी, जसी आहे तसी। तो ये जो है ये 80 भाषा में भाषांतर हो गया इसका। और जो लोग मांस खाते हैं, गाय खाते हैं, सुअर खाते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, जानवरों की तरह सेक्स करते हैं, कभी किसके साथ कभी किसके साथ, शादी नहीं करते खाली सेक्स करते रहते हैं, इतने पतित लोग जो हैं वो सब लोग अभी भगवान के भक्त बन रहे हैं और बने हुए हैं हजारों लोग। एक रशिया कंट्री ऐसी है जो कम्युनिस्ट कंट्री थी, प्रभुपाद जी का गौरव इतना गौरव है, प्रभुपाद जी जब थे तब रशिया में कम्युनिस्ट राज था, और किसी के धर्म को, हमारे धर्म को नहीं, किसी भी धर्म को वहां पर एंट्री नहीं थी, ना क्रिश्चियन धर्म को थी, ना हिंदू धर्म को थी, ना मुसलमान धर्म को, धर्म है ही नहीं, बस खाली साम्यवाद कम्युनिज्म। आज भी चाइना में चल रहा है ऐसे कम्युनिज्म, कोई धर्म का स्थान नहीं, धर्म को मानते नहीं। तो एक भगवद गीता प्रभुपाद जी की हजार लोग स्मगलिंग करके पढ़ते थे। आप में से कितने लोगों ने भगवद गीता पढ़ा है, तो वही हमारा कम से कम कितने 120 लोग होंगे हमारे अंदर, और हार्डली कुछ 10-15 हाथ ऊपर है, केवल 10-15 हाथ ऊपर है, और हम लोग भारतीय हैं। हमारे देश में कुरुक्षेत्र की जगह है, जहां कुरुक्षेत्र अभी भी है, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, वो हमारे देश में कृष्ण भगवान ने खड़े होकर युद्ध के पहले अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी, और अर्जुन का जीवन परिवर्तित हो गया था। अर्जुन ने कहा था एंड में, नष्ट मोह तुतिर्लब्ध्वा करिष्ये वचनं तपः, अब मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, अभी वो साफ हो गई है, और अब करिष्ये वचनं तपः, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। उसके बाद में पूरा युद्ध हुआ, जो भगवान ने कहा उसने किया, भगवान को प्रसन्न किया उसने। वो जो भगवद गीता है वो पूरे वर्ल्ड में मान्यता है उसकी, चाहे क्रिश्चियन धर्मी लोग हो, मुसलमान धर्मी हो, बुद्ध धर्मी हो, बहाई धर्मी हो, जू धर्मी हो, किसी भी धर्म के ज़ोरास्ट्रियन हो, पारसी हो, सब धर्म के लोग, बाकी कुछ नहीं मानते होंगे, लेकिन भगवद गीता को एक स्पिरिचुअल साइंस के रूप में मानते हैं जरूर। बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, रिसर्च करते हैं, फिलोसॉफर्स हैं, वो भगवद गीता को प्रमाण मानते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा एक हाथ में गीता लेकर घूमते थे सब वर्ल्ड के अंदर, और कहते थे कि जब भी मुझे संकट आता है, समस्या आती है, तो भगवत गीता मुझे मार्गदर्शन करती है, भगवत गीता गाइड्स मी। और महात्मा गांधी ने लिखा है कि रोज सुबह मैं उठकर जब स्नान करता हूं, पानी से शरीर को धोता हूं, और भगवत गीता के दिव्य उपदेश के जल से मेरे दिमाग को धोता हूं। आई टेक इंटेलेक्चुअल बाथ विद द वर्ड्स ऑफ भगवत गीता, ऐसे महात्मा गांधी बोलते थे। तो ये बात कहां से निकली? भगवत गीता के ऊपर, है ना। एक भगवत गीता रशिया में पहुंची, उसके बाद में कई लोगों ने छुप छुप कर उसको पढ़ा। आपने आपका हो गया तो आपने लिया, आपका हो गया तो उसने दिया, क्योंकि वहां पर वो बैन था ना पूरा। और वो कैसे गई भगवत गीता वहां पर? प्रभुपाद जी रशिया गए, मॉस्को में गए, लेकिन प्रभुपाद जी को प्रचार करने के लिए बंदी है ना वहां पर, सब जगह पर गुप्त हेर होता ना, वो केजीबी एजेंट्स वो घूमते रहते थे, इसलिए प्रभुपाद जी भी संन्यास वेश में नहीं गए, ऐसे गए, साथ में एक प्रभु जी गए थे। प्राइवेटली उन्होंने एक कमरे में किसी भक्ति को बुलाकर उसके साथ डिस्कशन किया गुप्त रूप में, और प्रचार नहीं कर सकते। तो वो व्यक्ति ने भगवत गीता ले ली एक, और वो उसमें बाद में हजार लोगों ने इसको पढ़ी, और अंडरग्राउंड डिवोटीज तैयार हुए, भूमिगत मतलब सीक्रेट, नॉट ओपन, ऐसा ना धोती कुर्ता पहनकर घूम रहे, ऐसा नहीं, ये सब सीक्रेटली जप कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उनको बाद में पकड़ा गया, पकड़ के उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, मतलब वहां पर ड्रग्स देके उनका हाल बना देते, मतलब पूरा बेहाल बना देते उनको, उनका दिमाग खराब कर देते ताकि दोबारा भक्ति नहीं करनी चाहिए। ऐसे जगह जाकर उनको टॉर्चर किया गया, उनका बेहाल कर दिया उनको पूरा पनिशमेंट के रूप में, उनकी किताबों को कभी जलाने का प्रयास किया, बहुत खराब कष्ट हो गया, कई भक्त लोग जेल में मर गए, इतना उनका हाल कर दिया उन्होंने। उसमें से कितने लोग अभी मायापुर में थे, मैं लेके आया हूं। क्यों उन्होंने इतना कष्ट सहन किया? तुम्हारे हमारी भगवत गीता का प्रचार करने के लिए, जो हमारे भगवत गीता है उनका धर्म भी नहीं है, वो उनका जन्म कृष्ण धर्म में हुआ, धर्म में हुआ, ऐसा होने पर भी हमारे देश के हमारे धर्म की भगवत गीता का प्रचार करते हुए उन्होंने अपना जीवन अर्पण किया। और हम लोग भारतवासी होकर भी हमारे लिए गीता फ्री ले रहे, 70-80 रुपए देंगे तो गीता मिल जाएगी, उसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते। और बाहर देश के लोग गीता को पढ़कर अपने जीवन को बदल सकते। रशिया के अंदर मॉस्को के अंदर एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, वो मंदिर में हर रोज सुबह के प्रवचन में 300 रशियन रहते हैं, 300 रशियंस आर अटेंडिंग भागवतम क्लासेस। और जब कोई उत्सव होता है उधर, तो वो देश इतना बड़ा है कि फ्लाइट से भी अगर आप एक कोने से दूसरे कोने में जाने का प्रयास करेंगे तो 12 घंटे लगते हैं, इतना बड़ा देश है। हमारे देश में कैसा है, अगर आपको कन्याकुमारी से जाना है जम्मू कश्मीर तो 4 से 5 दिन लगेंगे फ्लाइट से, ट्रेन से 3 दिन लगेंगे आपको। ये फ्लाइट से 12 घंटा जाएंगे, इतना विस्तार देश का है। तो लोग 12-12 घंटे की फ्लाइट पकड़ के उत्सव के लिए रशिया के मंदिर में फ्लाइट से पहुंच जाते हैं, और कोई भी उत्सव कम से कम 10,000 रशियन लोग अटेंड करते हैं, ना हिंदू है ना भारत में जन्म लिए है, लेकिन अपने देश में रहकर बहुत गरीब, बहुत गरीब हो गया, वो बहुत गरीब हो गया है, पावर्टी में आ गया पूरा। तो हम लोग भारतीय होकर भी हमने अभी गीता नहीं पढ़ाया, दुर्भाग्य की बात है, देखो हाउ मच हाउ अनफॉर्चुनेट। अच्छा, किसने किसके घर में अपने गीता पढ़ा नहीं, लेकिन अपने घर में गीता है, ऐसा कितने लोगों के? तो भी हाथ कम है सर, सबके हाथ ऊपर नहीं है, क्योंकि वो गीता जो है ना, जैसी आए तैसी ढोली करी, जैसी थी वैसी रखी है उसको, उसको टच नहीं किया है, अभी नई के नहीं है वो। खरीदना अच्छी बात है, घर में रखी है बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ना भी चाहिए, और पढ़ने के बाद में उसको जीवन में उतारना भी चाहिए, केवल पढ़कर उसको रटने के लिए नहीं है वो, इट इज अ प्रैक्टिकल साइंस। अर्जुन ने बोला अभी आपने गीता सुनाया ना, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहनत किया आपने भगवान, बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं करूंगा वही जो मुझे करना है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। करिष्य वचनम तव, तव वचनम करिष्य, जो आपने कहा है वैसे मैं करूंगा, मुझे जो लगता है वो मैं नहीं करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने ये गीता को जब लिखना शुरू किया, मतलब अनुवाद उसका तात्पर्य लिखना शुरू किया ना, तब मार्केट के अंदर 600 और गीता उपलब्ध थी, अनुवाद और उसका तात्पर्य और टीका अवेलेबल था, तो फिर भी उन्होंने अपना गीता लिखा, अलग तात्पर्य लिखा उसका, तो पब्लिश किया। तो लोगों ने, पत्रकार लोगों ने उनको पूछा कि इतना मार्केट में अवेलेबल है, इतना वर्षन है इसका, ये स्वामी का है, वो स्वामी का है, ये संस्था का है, वो संस्था का है, इस भाषा में, उस भाषा में, तो और एक डालने का क्या मतलब है उसका। उन्होंने कहा कि मैंने भगवद गीता एज इट इज लिखी है, जैसे भगवान को कहना था वैसे उसका अनुवाद किया है। मार्केट में जो अवेलेबल है वो गीता जैसे होनी चाहिए वैसे उन्होंने लिखा है, जैसे उनको लगता है कि वैसे, नॉट द वे एज इट इज बट द वे आई थिंक इट इज और द वे आई थिंक इट शुड बी और द वे आई वॉन्ट इट टू बी, ऐसे है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अलग्यो सिंपल एग्जाम्पल, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी भगवदगीता लिखा है, उसमें से क्या पढ़ाया उन्होंने लोगों को, अहिंसा पढ़ाया। अरे भगवदगीता में भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, थोड़ा सोचो आप, कॉमन सेंस सोचो। अर्जुन बोल रहे हैं मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना है क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अंकल्स, ग्रैंड अंकल्स, ग्रैंड फादर सब लोग खड़े हैं हमारे अपोजिट, मुझे नहीं मारना है उनको, नहीं चाहिए राज्य, कुछ भी नहीं चाहिए, सबको मारकर क्या करना है, मुझे नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे को अभी मेरे हाथ से धनुष फिसल रहा है, मेरा चर्म जो है त्वचा जल रही है, मुझे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो मुझे युद्ध नहीं करना है, बस वो बैठ गया उधर। तो भगवान ने इसको पूरी गीता में यही समझाया, खड़े होकर युद्ध करो, माम अनुस्मर युद्ध, अभी बैठे हो खड़े हो जाओ, अभी युद्ध करो, मतलब क्या करो, पूजा करो, युद्ध करो, बाण चलाओ और मारो लोगों को मतलब हिंसा बताया ना पूरा, हिंसा मतलब खाली खुद के लिए नहीं, जो राक्षसी लोग हैं उनको मारने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, धर्म के लिए उन्होंने युद्ध किया, अहिंसा नहीं किया ना। तो जो भगवान ने अर्जुन को धर्म के लिए हिंसा करने के लिए प्रवृत्त किया, तो उसमें से महात्मा गांधी क्या सार निकालते हैं, अहिंसा का। तो हाउ कैन यू से इट इज एज इट इज, कॉमन सेंस है, महात्मा गांधी से हमको वैर नहीं, तो दुश्मनी नहीं है, महात्मा गांधी का हम आदर करते हैं। फिर महात्मा गांधी ने उसने निकाला क्या उसमें से, अहिंसा मतलब जो उनको कहना था उन्होंने गीता के माध्यम से बताया, क्योंकि तो गीता बहुत फेमस है, गीता के माध्यम से कुछ लिखेंगे तो लोग बोलेंगे हाँ बस बढ़िया है। बाकी लोगों ने क्या लिखा गीता के माध्यम से, भगवान निराकार है, अरे भगवान खड़े थे, दो हाथ दो पैर वाले भगवान तो खड़े थे रथ में, खड़े खुद अपने मुंह से बताया गीता, और तात्पर्य में क्या लिखते हैं, भगवान निराकार है, भगवान की आंख नहीं होती, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, उसका आकार ही नहीं होता। जैसे मैं अशोक जी बोलूंगा, अशोक जी आप निराकार हो, ना आपकी आंख है, ना हाथ है, ना कान है, ना हाथ है, कुछ नहीं आपके, तो उनका अपमान है, क्योंकि वो व्यक्ति है, वो उनके शरीर है पूरा, और आप बोले वो निराकार है, ऐसा कैसा लगता है। तो साकार भगवान ने खड़े होकर अपने मुंह से अर्जुन को गीता सुनाया, उसको टीका करने वाले क्या बोल रहे हैं कि उनका आकार ही नहीं है। तो ऐसा है सब गड़बड़ मामला। इसलिए प्रभुपाद ने एक और गीता लिखा, और गीता सही है कि गलत है इसका क्या प्रमाण है, ऐसे टेस्ट क्या है कि वो पढ़ने के बाद में अगर हम कहेंगे कि भगवान इसके आगे जो आप कहेंगे वैसे हम करेंगे, क्योंकि ऐसे अर्जुन ने कहा था। गीता सही रूप में समझ गई है, इसका प्रूफ क्या है कि वो बोलेगा स्मृति नष्ट मोहो स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनं तव, अब मैं जो मेरे भ्रम था मेरा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, ये सब मेरा भ्रम था पहले, अब वो भ्रम निकल गया मेरा, और ये भगवान अभी आपने जो कहा वैसा ही मैं करूंगा, और वो करने लगेगा इसका मतलब उसको गीता सही रूप में समझ में आया। वो मांस छोड़ेगा, नशा छोड़ेगा, प्रसाद ही खाएगा केवल, व्यभिचार नहीं करेगा, शादी के पहले किसी का संबंध नहीं करेगा, जुआ नहीं खेलेगा, हाँ कोई गलत काम नहीं करेगा, भगवान का नाम उच्चारण शुरू करेगा, भगवान की सेवा शुरू करेगा, भगवान का आदेश पालन करना शुरू करेगा। इसका मतलब उसको गीता सदन में। तो प्रभुपाद जी के गीता पढ़ने से लाखों और करोड़ों लोगों ने भगवान की भक्ति का जीवन स्वीकार किया। तो ये सही गीता का प्रमाण है कि वो पढ़ने के बाद में केवल पंडित नहीं बन गया आदमी, उसका जीवन बदल गया। एक हो सकता है कि गीता पढ़ेगा खाली श्लोक याद करेगा और एकदम एक्सपर्ट प्रवचनकार बन जाएगा, लेकिन घर जाके मांस खाएगा। ऐसे कितने इंडिया में प्रवचनकार हैं, मैं आपको नाम नहीं लूंगा, बड़े फेमस प्रवचनकार, उनके सभा में उनका प्रवचन सुनने के लिए लाखों लोग कभी कभी इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो लोग व्यभिचार करते हैं, मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। कितने ऐसे भागवत कथाकार हैं जो गोमांस भी खाते हैं, बोलो, लेकिन कथा कर रहे हैं भागवत की और जनता अटेंड कर रहे हैं कथा को, ना उनका जीवन परिवर्तन हो रहा है खुद का, ना सुनने वालों को हो रहा है। तो ऐसी कथा करने से लाभ क्या है, केवल पैसे के लिए करते हूं, इट्स अ बिजनेस, इज अ चार्ज, इज अ डोनेशन, इज अ अर्निंग, और करोड़पति बन जाते हैं ऐसे लोग, लेकिन सुनने वाले का एक का भी जीवन परिवर्तित नहीं होता है। रूपा जी ऐसे भक्त संत नहीं है जिनको बड़ा नाम करना है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, यश प्राप्त करना है, सब जगह नाम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े करोड़ों रुपए के मंदिर होने चाहिए, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं था। उनका मंदिर इतना भव्य क्यों बनाया उन्होंने, लोग आएंगे और जीवन को परिवर्तित करेंगे। सुबह जब का समय होता है मंदिर में, तो हम और आप जब करने बैठे, हमारा जब का समय हम लोग को पूरा करना है, जब करना है हमको बैठ के। कुछ भक्त लोग अपना जब का समय निकालकर बाजू में आते हैं और नए आए हुए लोगों को बाजू में लेकर उनको जब करना सिखाते हैं आधा घंटे के लिए, बोलते अभी आप जपा करो, घर में भी करते रहो, जीवन में इसको अपना लो, बुरी आदत तो छोड़ दो, शराब सिगरेट जुआ छोड़ दो, भगवान के नाम का जप करो, और किताब दे देंगे इसको पढ़ो, घर जाकर इसको पढ़ो और समझ लो जीवन में क्या करना चाहिए। इसीलिए मंदिर बनाते हैं और कथा इसलिए करते हैं, ये कथा इसलिए होती है कि आपका जीवन परिवर्तन हो जाए, कुछ सुन के आपको समझे जीवन में क्या उद्देश्य है। तो मुझे क्या जरूरत है बार बार बोलने की, पुकारो पुकारो पुकारो, मैं तो पुकार रहा हूं, लेकिन आपको पुकारना चाहिए इसलिए बोल रहा हूं। ये प्रवचन ना किए बिना मैं अपने आप पुकार सकता हूं भगवान को जाके, अकेले में मेरा जीवन सफल हो सकता है, लेकिन अकेले का जीवन सफल करके लाभ क्या है, सबका जीवन सफल होना चाहिए। तो मैं क्या तात्पर्य कह रहा था आपको कि रशिया जैसे जिस देश में भक्ति करने के लिए विरोध है, उस देश में लाखों लोग छुप छुप के भक्ति करते थे, उनको अरेस्ट किया गया, उसको पीटा गया, उसको जेल में डाला गया, उनको बेहाल कर दिया गया, फिर भी उन्होंने भगवान का भक्ति छोड़ा नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला अरे क्या धर्म है, अपना धर्म तो है नहीं, उसके लिए अरेस्ट भी हो रहे हैं हम लोग, डंडे भी पड़ रहे हैं, पीट भी रहे हैं हम लोग, क्या जरूरत, छोड़ दो उसको, क्योंकि वो लोग एक ही बोलते थे इसको छोड़ दो फिर आपको छोड़ दे। लेकिन वो जेल में रहे, लेकिन भगवान का भक्ति नहीं छोड़ा। आपको आश्चर्य होगा सुनकर के प्रभुपाद की किताबों का पावर क्या है। प्रभुपाद जी किताब स्मगलिंग के रूप में जाकर उन्होंने जो पढ़ा, उसके बाद में जीवन परिवर्तन हो गया ना, उसमें एक व्यक्ति था वो बेचारा मर गया जेल में, साइगो रशियन था, वो जेल के अंदर इतना हाल किया उसका, इंजेक्शन लगा के वगैरह, उनका एक ड्रामा किया था, ड्रामा, उस ड्रामा में वो डॉक्टर का रोल किया था जो जेल में वो भक्तों को इंजेक्शन लगाते थे, तो डीरिया साइकियाट्रिकली, वो रोल मैंने किया था। मैंने अनुभव किया कि भक्त लोग कितने स्ट्रांग थे कि उन्होंने मालूम है क्या, उनको खाली एक ब्रेड मिलता था खाने के लिए और उस पर सॉल्ट डाल के उनको खाना खिलाते थे, बस दैट्स ऑल। जेल के अंदर उनका ब्रेड खाना क्या था, ब्रेड का स्लाइस और उस पर सॉल्ट, बस दैट्स ऑल, और कुछ नहीं मिलता था उनको। इतने साल तक जेल में रखा उनको, खाली ब्रेड और सॉल्ट, इतना जेल। उन्होंने उसमें से कुछ ब्रेड को बचाकर पानी में भिगाया और उसका गोली बनवाया और सुखाया और वो गोलियों की माला बनाई और उस पर जप किया। और हम लोग आपको विनती कर रहे हैं, माला खरीदो, मिल रही है और आप लोग लेते नहीं हैं। अंतर अभी वापस जप करने का समय आता है, कुछ लोग ऐसे ही बैठे थे। रशिया में जो हमारे धर्म के लोग नहीं है, जेल में बैठे हुए हैं, ब्रेड की माला बनाकर जप कर रहे और न्यूज़पेपर के फूल बनाकर, न्यूज़पेपर की फूलों की माला बनाकर भगवान के फोटो को अर्पण करते थे और सेवा करते थे। कैन यू इमेजिन दिस, दिस कैन बी अ ड्रीम, यू नो, आपको सपना आ सकता है, सपने में ऐसा कुछ हो रहा है। ये सत्य है, अनबिलीवेबल, इनकंसीवेबल सिचुएशन। क्यों ऐसा हुआ? प्रभुपाद जी एक बार मॉस्को में गए और एक भक्त को मिले और उसको किताब दिया उन्होंने, और उसके वजह से, उसके इतने छोटे संघ के वजह से इतने सारे लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया कि वो भगवान कृष्ण के लिए, जो उनका भगवान नहीं है, उसके लिए जान देने को तैयार है। और मर गया वो भक्त अल्टीमेटली, जब वो मर गया ना तो उसके हाथ में ब्रेड की बनाई हुई माला थी, उसको जप कर रहा था और भगवान को अर्पण की हुई पेपर, न्यूज़पेपर की माला भगवान के प्रसाद के रूप में पहनकर वो बैठा था और वहीं पर गिर गया, वो मर गया। नहीं तो हम लोग हैं भारतवासी, धर्म के देश की जन्म लेने वाले लोग, जहां भगवत गीता ने जन्म लिया, जहां पर संतों ने जन्म लिया, जहां रामचंद्र आए, जहां कृष्ण आए, जहां सब लोग आए, वामन आए, बुद्ध देव आए, इतने बड़े बड़े महान अवतार भगवान के, स्वयं भगवान के, संत लोग, तुकाराम महाराज, ज्ञानदेव महाराज, बड़े बड़े संत लोग, गुरु नानक, सब लोग यहां आए, जन्म इस भूमि के अंदर जन्म लिया उन्होंने। भारत भूमि से हो लो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक तो नहीं करो परोपकार। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं हमारे लिए कि आपने भारत में जन्म लिया है तो न केवल अपने जीवन को सुधारो लेकिन करो परोपकार, दूसरों का भी सुधारो। ये भारत के देश में जन्म लिए हुए लोगों के लिए भगवान का आदेश है, हमारा आज्ञा हुई तार ही देश, जान देखो तारा कहो कृष्ण उपदेश। ऐसा मत समझो कि केवल प्रभुपाद जी का काम है, हम तो क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं। भारत में जन्म लिए हुए हर एक व्यक्ति के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। अगर आपको यहां जन्म मिला है तो आपका यह फर्ज है कि खुद भक्त बनो, दूसरों को बनाओ। और केवल एक किताब पढ़ के हाँ, प्रभुपाद को मिले भी नहीं हो, अपनी जान दे दी लेकिन हरे कृष्ण को नहीं छोड़ा उन्होंने। उनको केवल एक ही था, हाँ, कि आप हरे कृष्ण छोड़ दो, फिर हमको जेल से आपको छोड़ देंगे। लेकिन वो जेल में ही रहे, तड़पते रहे और वही मर गए, लेकिन हरे कृष्ण को नहीं छोड़ा। ये प्रभुपाद जी का करिश्मा है। इसलिए हम लोग अभी कैंप के बाहर आए हैं या भक्ति विधान में कोई नौकरी कर रहे हैं, ये सबका भाग्य है कि प्रभुपाद जी से हमारा मुलाकात हो रहा है, परिचय हो रहा है। प्रभुपाद जी ने कितना मेहनत किया पता है, 70 साल की उम्र में, आपने से 70 साल कितने लोग हैं, 70 ईयर्स एज कितने लोग हैं, 65 कितने लोग हैं, एक हमारी मौसी है और कुछ लोग हैं 65 के आसपास, और कितने लोग हैं, हाँ 60 प्लस कितने लोग हैं, 60 प्लस, आप 98 हैं, जो 65 के ऊपर है एक बार हाथ कर ऊपर जाए। कितनी तकलीफ है आजकल आपको, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, कितना तकलीफ हो रहा है। अगर आपको हम बोलेंगे अभी आप बोट में बैठो, अमेरिका जाओ, वहां पर हरे कृष्ण का प्रचार करो, अगले 12 साल आपको करना है प्रचार, 24 आवर्स, आपका 100 मंदिर खुलना है मरने के पहले, याद रखना। तो बोलेंगे अरे तो रिटायर हो गए हम अभी, तो एक जगह बैठ घूमने आराम करने का प्रयास कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं। जिस उम्र में दुनिया भर के लोग रिटायर होते हैं और साधु लोग जिस उम्र में वृंदावन धाम में आकर बस जाते हैं कि अभी सब कुछ कहीं घूमना नहीं, प्रचार सब कर लिया, अभी ये उम्र हो गई तो अभी प्रचार करना बंद करके यहां पर आके बस जाते हैं, ताकि मरे, मरने का समय आया तो वृंदावन धाम में मरेंगे तो भगवान के धाम में जाएंगे। ऐसी उम्र में प्रभुपाद जी ने भारत छोड़ा, वृंदावन नहीं छोड़ा, ऐसा नहीं वृंदावन छोड़कर बॉम्बे चले गए, ऐसा नहीं, भारत को छोड़ के वो परदेश गए और यहां के संतों ने उनको बोला व्हाट काइंड ऑफ साधु यू आर, सब साधु लोग इस उम्र में यहां पर आकर रहते हैं, कभी भी मर सकता है आदमी, तो बाहर नहीं जाना चाहिए, इधर ही रहना चाहिए, कभी मर गया तो इधर बनना चाहिए। तुम साधु कैसे साधु हो, यहां पर आके बसे तुम लोग, चार साल पांच साल छह साल तुम रहे और अभी मरने के टाइम पे बाहर जा रहे हो, तो साधु सही नहीं, गलत साधु, इसको मालूम नहीं है भक्ति क्या होती है। प्रभुपाद जी फिर भी गए, सात समुद्र पार करके गए और 108 मंदिर बनवाए उन्होंने, किताब लिखे रात को बैठकर। पता है जब पूरी दुनिया सोती थी ना, तब रात को 1 बजे प्रभुपाद जी उठते थे और 1 से 4:30 बजे तक किताब लिखते थे, क्योंकि दिन भर नए नए मंदिर में प्रचार करने के लिए, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, मंदिर को स्थापना करने के लिए, पूरा मैनेजमेंट संभालने के लिए, भक्तों की समस्या ट्रेनिंग करने के लिए वो टाइम मिलता नहीं था उनको दिन भर में। इसलिए सब लोग सोने के बाद में खुद केवल 2 घंटा सोते थे और रात को 4 घंटा किताब लिखते थे। वो किताब क्यों लिखा है, आप और हम पढ़ना चाहिए इसलिए लिखा है, लाके शोकेस में रखने के लिए नहीं रखा है, और आरती करने के लिए नहीं रखा है, दशी आए दशी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत किया है, उससे 12 साल के अंदर उन्होंने 108 मंदिर बनाए, 14 बार विश्व का भ्रमण किया उन्होंने और हजारों लोगों को भक्त बनाया, लाखों लोगों को फॉलोअर बनाया, 80 किताब लिखी उन्होंने। मैंने भी, मेरा नाम खुद बचपन का नाम विवेकानंद है, तो मैंने बचपन से, मुझे स्वामी विवेकानंद प्रति बहुत आकर्षण था और मैं हमेशा उनकी किताब कहां से खरीद के लाके पढ़ने का व्यवस्था कोशिश करता था। लेकिन सॉरी टू से मुझे कभी भी उनकी किताब समझ में नहीं आई, आई एम वेरी सॉरी टू से, आई डोंट हैव, आई फुल रिस्पेक्ट फॉर स्वामी विवेकानंद, ग्रेट रिस्पेक्ट। लेकिन जितनी उनकी किताब मैंने खरीदी और पढ़ने का कोशिश किया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया, इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज, इतना डिफिकल्ट, भगवान निराकार है, उसके अंदर हमको एक रूप होना है, ब्रह्म ज्योति में जाना है, कुछ समझ आता नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी की पहली किताब जब मैंने हाथ में ली ना, तो कुछ ही घंटे में फिनिश कर डाली मैंने। देखो आई टेल यू सीक्वेंस, मैं 4 फरवरी 1984 में मैं मंदिर में गया पहली बार, ओके, तब मुझे पहली बार एक किताब दिया उन्होंने, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आप जरूर पढ़ना उस किताब, बहुत सुंदर किताब है, उसके अंदर सब प्रश्न उत्तर है, प्रश्न उत्तर ऐसे उनके 500 प्रश्न का उत्तर दिया उसके अंदर। सबसे पहले मंदिर में मैं गया तो मुझे किताब दिया, मैंने उसको पढ़ना चालू किया और वो किताब पढ़ के समाप्त होने के पहले मैं 16 माला जप में ऑलरेडी आ चुका था, बिफोर आई फिनिश दैट बुक ऑलरेडी 16 राउंड्स। ये किताब का पावर है, मांस खाने वाला व्यक्ति, टाइम पास करने वाला व्यक्ति, जिसको भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा व्यक्ति एक किताब पढ़ के 2 घंटा रोज जप करने लगा, ये प्रभुपाद की किताब का चमत्कार है। ऐसी किताब प्रभुपाद ने लिखी, जीवन को परिवर्तन करने वाली। नहीं तो हम लोग भी डॉक्टर हैं, हम भी शराब पीते थे, अभी डॉक्टर बनने के बाद हम लोग पार्टी करते ना, क्या डॉक्टर की मीटिंग में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, एनुअल कॉन्फ्रेंस, हाँ, एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट, बड़ी बड़ी नाम है संस्था के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑल कंसल्टेंट्स, एमडी एमएस, उनका कॉन्फ्रेंस होता है, बड़े बड़े मेडिकल डिस्कशन करते हैं और एंड में क्या करते हैं, सब लोग शराब पीते हैं और नशे में चूर हो जाते हैं, लेकिन इंटॉक्सिकेटेड इन द इवनिंग, और बहुत सारे लोग कॉन्फ्रेंस में आते नहीं है, खाली एंड में आते हैं शराब पीने के लिए और मांस खाने के लिए, उनके हर पार्टी में शराब और मांस होता है, उसके बिना उनके कोई कॉन्फ्रेंस होती नहीं। और हम लोग भी कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइज करने का कॉन्फ्रेंस, तो बोलते हैं मेन्यू में क्या है, नॉनवेज होगा ना, बूज होगा ना, क्या बूज में देंगे आप, स्कॉच देंगे कि वोडका देंगे, तो ही आएंगे वो लोग। तो अगर हम आज भक्त नहीं बने होते और आज डॉक्टर अभी अभी हैं, तो हम लोग भी जाते थे उस पार्टी में, तो हम बच गए प्रभुपाद की कृपा से, ये सब बुरी हालत से बच गए, हम कोई अच्छे लोग नहीं है, हमको ये सब करने की इच्छा थी, हम लोग वेट कर रहे थे कभी पास हो जाएंगे और पैसा कमाएंगे और सब धमाल करेंगे, ये हमारा मूड था उस समय। और अगर हम भक्त नहीं बने होते तो ये सब कुछ कर चुके होते और करते होते। प्रभुपाद जी की कृपा से डॉक्टर होने के बाद भी अभी हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, चाय कॉफी भी नहीं पीते, रोज जप करते हैं भगवान के नाम का, पूरा जीवन सुधर गया है। और कभी भी ऐसा लगा नहीं हमको, 25 साल अभी 28 साल हो गए, कभी ऐसा लगा नहीं कि अरे गलती किया प्रभुपाद जी संस्था में आ गए, अरे ये गलती क्या, हरे कृष्णा के भक्त बन गए, ऐसा कभी भी लगा नहीं कि हमने मिस्टेक किया, क्यों गए मंदिर में हम 84 में, सब जीवन बिगड़ गया हमारा, हमारे परिवार को लगा इसका जीवन बर्बाद हो रहा है, ये कहीं जा रहा है फॉरेन के संस्था में, हाँ फॉरेन के संस्था में इसको शायद वो ड्रग लेगा जाके, चरस पिएगा, शायद कुछ हरे कृष्ण हरे राम नाच करेगा, चरस पी के पता नहीं क्या करेगा, बहुत औरतें रहती है, बहुत वेश्या व्यवस्था भी करेगा, पता नहीं क्या करेगा, ऐसा हमारे घर में डर था, बहुत डर था, मेरी मौसी को मालूम है, मेरे पिताजी बहुत डरते थे कि हरे कृष्ण में जा रहा है जुहू में, पता नहीं दम मारो दम मिट जाए दम क्या पता नहीं करेगा, डर था उनको, लेकिन वही पिताजी बाद में बोले, मेरे पिताजी एक बार मंदिर में आए थे, उन्होंने हमारे गुरु से झगड़ा किया था कि आप मेरे बच्चे को भेका रहे हो, उसका जीवन बर्बाद कर रहे हो, आप लोग को क्या मालूम भक्ति क्या होती, आप लोग फॉरेनर हो, आप मेरे बच्चे को जो पढ़ा लिखा अच्छा होशियार लड़का है उसको आप बिगड़ा गए हो पूरा, झगड़ा करके आए थे मेरे पिताजी हरे कृष्णा के मंदिर में आके, लेकिन वही पिताजी एंड में क्या बोले, एंड में बोले तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है और करते रहो तब मेरे उम्र में कर पाओगे। तो प्रभुआ जी उस उम्र में जब मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए थे उस उम्र में वो अमेरिका गए और प्रचार करके आए, जैसे हम लोग यहां पर बैठे इतने सुंदर मंदिर में बैठे हुए हैं, प्रसाद की व्यवस्था है, प्रवचन की व्यवस्था है, सुंदर दर्शन है, इतना सुंदर श्रृंगार दुनिया में कोई करता नहीं ठाकुर जी का, आप लोगों को वहां से हिलने का दिल नहीं करता होगा, अरे चलो चलो समाज देखना है, चलो और देखना है, इसलिए आप लोग हिले, नहीं तो आप वहीं खड़े रहते, आप जितना देखेंगे उतना उतना आपका दिल नहीं भरेगा। ये सब किसने किया, प्रभुपाद जी ने एस्टैब्लिश किया सब ये। सबसे अधिक लोग किसके लिए आते हैं, राधा श्याम सुंदर और कृष्ण बलराम को देखने के लिए आते हैं यहां पर, हाउ ब्यूटिफुल द लॉर्ड इज टू सी देम दे कम हियर, इतना बढ़िया श्रृंगार करते हैं वो भगवान का कि केवल देखने के लिए लोग आते हैं और देखते रह जाते हैं उनको। तो प्रभुपाद जी ने कैसे किया, लोगों को भगवान के लिए पागल बना दिया, इतना मोहित कर दिया उनको, इतना बोला ऐसा सुंदर भगवान का श्रृंगार करो कि लोग देखते रह जाए, इतना बड़ा मंदिर बनाया ताकि वो देखने के लिए लोग आते हैं क्या क्या है इस मंदिर में, ये प्रभुपाद जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो बड़े दुख की बात है कि अमिताभ बच्चन को मैन ऑफ द मिलेनियम का कुछ पुरस्कार मिला, जो झूठे नाम से अपने को किसान बनाकर जमीन खरीदता है बिहार में, उसको रिप्लाई करते हैं कि मैन ऑफ द मिलेनियम, प्रभुपाल जी मैन ऑफ द मिलेनियम, क्योंकि उन्होंने इस सदी में इतना परिवर्तन किया, चमत्कार करके दिखाया उन्होंने, पृथ्वी से आते सर्व जगत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी में हर देश में हर शहर में हर गांव में मेरा नाम दिया जाएगा, और वो भविष्यवाणी प्रभुपाद ने सत्य करके दिखाई है। आज 600 देश 600 जगह पर मंदिर बनाया गया है, फार्म हाउसेस है, गेस्ट हाउसेस है, गौशाला है, ब्रह्मचारी आश्रम है, हर प्रकार की व्यवस्था है, और हर गांव में हर शहर में हरे कृष्णा ये शब्द जो है एकदम प्रचुर मात्रा में प्रचलित हो गया है, एवरीवन नोस हरे कृष्ण, इतना फेमस कर दिया भगवान का नाम, जिन लोगों को कृष्ण का मतलब क्या है उसको कैसे बोलना होता है कृष्णा, उनको उच्चारण भी करने को आता नहीं था, वो कृष्णो कृष्णो कुछ भी बोलते थे, उन लोगों को प्रभुपाद ने हरे कृष्ण मंत्र जप करने को सिखाया। तो बताइए आप लोग बेडशीट क्यों पहनते हो, बेडशीट तो नहीं, बेडशीट नहीं धोती है, कुर्ता क्या होता है, धोती क्या होता है, जो खुले बाल छोड़ के औरत घूमती है उनको बाल बंद करके पल्लू पहन के मंदिर में आने को सिखाया उन्होंने, और हम लोग क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न लोग बाल छोड़ के घूम रहे हैं इसलिए हम भी बाल छोड़ के घूम, हमारा संस्कृति कहता है कि औरत लोगों को बाल बांध के बंद होना चाहिए और कवर करना चाहिए उसको, केवल जिसका विवाह हो गया है वो पति को उसको देखना चाहिए उसके बाल को, और हमारी औरतें सब दुनिया को अपने बाल दिखाती हैं, और संस्कृति क्या बोलती है कि स्त्रियों को अपने शरीर को ढक के बालों को ढक के अच्छी तरह रहना चाहिए, ये संस्कृति प्रभुपाद ने उनको सिखाया, मुझे अभी भी समझता नहीं कैसे सिखाया होगा, आई डोंट नो हाउ ही मस्ट हैव ट्रेन्ड देम, हाउ डिफिकल्ट इट इज, हाँ जो लोग चमचे से खाते हैं उनको उन्होंने हाथ से खाने को सिखाया, जो लोग टेबल पर बैठ के खाते हैं उनको जमीन पर बैठ के खाने को सिखाया, इतना सुंदर कल्चर दिया उनको उन्होंने, अभी आप जाओ इस्लाम मस्जिद में, आपने देखा होगा ना कितनी लेडीज देखा आपने, फॉरेनर लेडीज, हाँ, ब्लू आईज, गोल्डन हेयर, साड़ी पहन के, अच्छी फ्लैट वेड़ी डाल के, सर पे पतरा लेके, हाथ में एक बालक है उसको तिलक लगाया है और कीर्तन में नाच रहे हैं, देखा ना आपने भी? अभी अभी तो दोपहर का समय है, अभी सुबह आएंगे ना और शाम को आएंगे तो आप देखेंगे इतने सारे फॉरेनर, सब कंट्रीज के फॉरेनर्स, साड़ी पहन के, अच्छा बॉर्डर वाली साड़ी पहन के, पल्लू लेके, उनके बच्चे धोती कुर्ता पहन के, छोटे छोटे बच्चे सैंडी रख के कीर्तन में नाच रहे हैं, जप कर रहे हैं। हम लोगों को शर्म आती है जब करने के लिए, तिलक लगाने को 3 साल लगते हैं, और ये तिलक लगाए तो लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे क्या, कौवा ने गड्ढा किया था ऐसा बोलते हैं मराठी महाराष्ट्र में, कावड़े ने नाल के लिए क्या ऐसा बोलते हैं गांव में। अभी कोई भक्त मुझे अभी अपना ड्राइवर है ना, नाम क्या उसका, नवल किशोर है क्या इधर, वो मुझे पता है क्या कुछ होता कल, बोलता प्रभु जी जब से मैंने हरे कृष्णा में नौकरी लिया है आपके पास ड्राइवर का, और जब मैं धोती कुर्ता पहन के गांव में जाता हूं ना, मुझे लोग हंसते हैं गांव में, मुझे क्या करना चाहिए मुझे, देखो ब्रज में, हाँ वृंदावन धाम जहां भगवान का धाम है, भक्ति यहां से पैदा होती है, उस गांव के ब्रजवासी लोग, उस गांव का एक लड़का अगर धोती कुर्ता पहनता है तिलक लगाता है तो उसको देख के हंसते हैं लोग, ये हमारा संस्कृति का विनाश हो गया है। और जो लोग पैंट और हाफ पैंट और चड्डी के बिना वस्त्र नहीं पहनते, कोई लड़की और लड़का दोनों, और कम से कम वस्त्र पहनते हैं, अधिक से अधिक शरीर को खुला रखते, सब कुछ दिखाते हैं अंदर बाहर का, वो लोग आज यहां पर आकर साड़ी पहनकर, धोती कुर्ता पहनकर, तिलक लगाकर, सर मुंडवाकर, शेरी रखकर, हाँ भगवान का भजन कर रहे हैं, और हम लोगों को क्या लग रहा है, हमको पैंट पहनना चाहिए, हमारी लड़कियां और लड़के पैंट और बरमूडा और टी शर्ट और ऐसा टाइट्स और करके बाल खुला छोड़ के घूम रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, और वो हमको हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, जो हम लोग भूल चुके हैं, जो हमारा धन है वो हम खो चुके हैं, और हमारा खोया हुआ धन ढूंढ के वो लोग अपना रहे, देखो कितना दुर्भाग्य है। प्रभुपाद जी का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप हरे कृष्णा बनो, हम लोग यही खाली कह रहे हैं कि अपनी खोई हुई संस्कृति को पहचानो और उसको फॉलो करना सीखो। प्रभुपाद गेव कल्चरल रेवोल्यूशन, प्रभुपाद ने सांस्कृतिक क्या कहते हैं उसको, क्रांति निर्माण किया, लोगों को सिखाया कि कैसे जिया जाता है, यहां तक कि हाथ से खाना और बैठ के खाना भी सिखाया उन्होंने, और हमारे भगवान का ड्रेसिंग कैसे करना चाहिए वो भी सिखाया उनको उन्होंने, और सबसे गिरे हुए लोगों में से 1 लाख ब्राह्मण बनाए उन्होंने। देखो आप सुबह बढ़ती मंदिर में आएंगे ना तो आरती करते हुए कितने फॉरेनर मिलेंगे आपको, दे आर डूइंग आरती ऑफ द लॉर्ड, पर हम लोग अभी तक रिक्शा भी नहीं लिए हुए हैं, ट्रेन भी नहीं हुए, अभी हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, फॉरेन के लोग जो उनका जन्म किधर कंट्री में हुआ, क्या क्या संस्कृति में जन्म हुआ उनका, कैसे कपड़ा पहनते थे, क्या करते थे, कोई शादी वादी करते नहीं है, आज ये लड़की तो कल दूसरी लड़की, अच्छा लगा तो डिवोर्स, क्या क्या कल्चर है उनका, वो सब लोग आपके भक्त बन रहे हैं और हम लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, मतलब ऐसा बोलना, इन शॉर्ट पता है क्या है, वो लोगों ने अपना गंदा जीवन है ना उसको त्याग दिया, मतलब क्या हुआ, हम सुबह खाना खाते हैं, रात को भी खाना खाते हैं, और सुबह उठ के पहले क्या करते हैं, जो गंदा है उसको बाहर फेंक देते हैं, जो जरूरी नहीं है, जो योग्य नहीं है, जो त्याज्य है, मतलब इट इज व्हाट रिजेक्टेबल, उसको सुबह हम लोग पहले जाके संडास में छोड़ देते हैं। तो वो लोग जो छोड़ रहे हैं उनका गलत संस्कृति, वो लोग हम लोग ले रहे हैं उसको, वी आर एक्सेप्टिंग व्हाट इज देयर बैड कल्चर विच दे आर रिजेक्टिंग, दैट वी आर एक्सेप्टिंग एज वेरी स्वीट, इज दैट ट्रू और नॉट, एक्चुअल फैक्ट है ये, एक्चुअल फैक्ट है ये, याद रखना। वो लोग कम से कम कपड़ा पहनते हैं, दारू पीते हैं, हाँ लड़कियों को घुमाते हैं और कंपेनियनशिप करते हैं और सोते अलग से साथ होते हैं, विवाह करने के बाद छोड़ देते हैं, वो उनका जो कल्चर है वो अभी इंडिया में आ रहा है, वी वॉन्ट कंपेनियनशिप, डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, नो वी विल टेक रिस्क ऑफ मैरिज, और वो लोग हमारे मंदिर में आकर हिंदू स्टाइल से विवाह करते हैं और धोती कुर्ता पहनकर जीवन जीते हैं, यहां पर कम से कम 1000 भक्त हैं जो टोटल फॉरेनर हैं, उन्होंने अपना देश छोड़कर यहां पर फ्लैट लेकर परमानेंट रहते हैं। वो यहां पर 2 महीना अपने कंट्री में आते हैं, थोड़ा धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमाते हैं और एकदम सिंपल लाइफ यहां पर 10 महीना रहते हैं। मायापुर में भी कम से कम 1000 गृहस्थ कपल्स हैं, 800 कर्मचारी हैं, वो सब लोग ऐसे फॉरेन से आए हुए हैं। और यहां का कल्चर, यहां का जीवन, मुझे आप बोलेंगे ना बॉम्बे छोड़कर वृंदावन शिफ्ट हो जाओ तो मैं 15 बार सोचूंगा कैसा होगा वहां पर। बॉम्बे में इतना मैं अटैच हो गया हूं। ये लोग अपना कंट्री छोड़कर हमारे देश में आते हैं, यहां गर्मी है, सर्दी है, हीटिंग नहीं है, कूलिंग नहीं है, सब सिस्टम में अंदर लाइट भी ठीक से नहीं आती है। ऐसे जगह पर अगर सेटल हो गए, और अब मैं आपको बोलूंगा अभी जो मैडम आपको अभी अगले महीने में वृंदावन में शिफ्ट होना है तो आप लोग 50 बार सोचेंगे उसके बारे में, आऊं कि नहीं आऊं, क्या व्यवस्था है यहां पर। विल थिंक 15 टाइम्स हु विल गिव अप बॉम्बे कम्फर्ट्स एंड कम हियर। सो डिफिकल्ट, हमारे लिए स्टाफ नहीं मिलता है यहां वृंदावन में नौकरी करने के लिए, बॉम्बे से कोई आने को तैयार नहीं है। और ये लोग विदेश से आकर यहां पर रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? भक्त बनने के लिए। क्योंकि हमारे वृंदावन में और हमारे मायापुर में, हमारे जगन्नाथपुरी में, हमारे द्वारका में उनको श्रद्धा है, इसलिए वो आ रहे हैं। और हमको नहीं है, हमको उनके न्यूयॉर्क में और कनाडा में और शिकागो में श्रद्धा है, हमको उनके जैसा बनना है। देखो आम जनता क्या पहनते हैं आज, सब जीन पहनते हैं। जीन क्या मालूम है क्या? जीन वहां पर जो खेती में काम करते ना वो लोग जीन पहनते हैं। तो वो हमने जीन में ऐसा है कि उठते बैठते चलते फिरते हमको जीन ही पहनते सब लोग आज। हमारे हॉस्पिटल में मना है पहनने के लिए, हमारे कैंप में भी मना है, फिर भी बहुत लोग कैंप में जीन पहनकर काम करते थे। ये क्या कल्चर है? इससे बेस्ट कल्चर हमारा कल्चर नहीं है, हमारा कल्चर धोती कुर्ता है। चलो एट द मोस्ट आप पैंट शर्ट पहन सकते हो, लेकिन जीन बरमूडा ये वो सब स्टाइल मारते हैं तो सब उनका सब है। और हम लोग बड़े गर्व से उनका कपड़ा पहनते हैं, और हम लोग बहुत एडवांस्ड है, वेरी एडवांस्ड, नो वेरी मॉडर्न एंड वेरी एजुकेटेड। सही एजुकेशन क्या है? प्रभुपाद ने सिखाया आपको। सही एजुकेशन क्या है? जो सही रूप से एजुकेटेड है उसका लक्षण क्या है? वो कहता है परस्त्री मातृवत, जो दूसरे किसी भी औरत को जो उसकी पत्नी नहीं है वो उसको माता के समान देखता है, उसको ज्ञानी माना गया है। और डेफिनेशन, हाँ, परद्रव्येषु विषवत, दूसरे के पैसे को वो विष के समान मानता है, कभी भी किसका भी पैसा वो हारने लगाता है, जो अपना है उसी को खर्च करता है, किसी चीटिंग चोरी कभी नहीं करता है, अपने मतलब अपने धन के अलावा सारे धन को वो पत्थर के समान मानता है, वो ज्ञानी पुरुष माना गया है। अपने पत्नी के अलावा बारी साफी सारी स्त्रियों को माता के समान देखता है, ही इज नॉलेजेबल। एंड आत्मवत सर्वभूतेषु, सब जीवों को वो अपनी तरह ट्रीट करता है, जैसे वो खुद को चाहता है ट्रीटमेंट मिले वैसे वो सबके लिए ट्रीटमेंट देता है। लाइक बाइबल में जीसस क्राइस्ट बताते हैं, ट्रीट दाय नेबर एज़ थायसेल्फ, डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक टू बी डन अनटू यू। ये जो बाइबल का वर्ड है वो चाणक्य पंडित ने भी कहा है। ये 3 गुण जिसके अंदर है उसको हम नॉलेजेबल समझ सकते हैं, इज अ पंडित, इज नॉलेजेबल पर्सन। नॉलेज का लक्षण ये है, ये नहीं कि हम लोग साइंटिस्ट बने हुए हैं और हमारे पास धन है और इतनी डिग्री है हमारे पास, यहां का MBA वहां का भी MD है वहां का वो है, ये नॉलेज का लक्षण नहीं है। इतना सब डिग्री प्राप्त करने के बाद भी आदमी व्यभिचारी हो सकता है, शराबी हो सकता है, जुआरी हो सकता है, डिप्रेस हो सकता है, तो नॉलेज का क्या फायदा है? नॉलेज शुड हेल्प यू टू बिकम बैलेंस इन लाइफ। तो प्रभुपाद जी ने हमको वो नॉलेज दिया जिससे हमारा जीवन बैलेंस हो गया और शांत हो गया और आनंद से भर गया। कभी हम लोग रिपेंट नहीं करते कि पश्चाताप नहीं करते क्यों हरे कृष्ण में आए, पता नहीं मांस भी छूट गया, लहसुन प्याज भी गया, अरे चाय भी गई, क्या फायदा है हरे कृष्ण में आके, चाय भी नहीं मिलती, बोलो चाय नहीं पिलाते हरे कृष्ण, क्या संस्था है पता नहीं क्या बनाया, ऐसा कभी हमको लगा नहीं आज तक। जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, जैसे कि जब हम लैटरिन में कुछ छोड़ते हैं ना सुबह को, उसके बारे में सोचते हैं क्या बाद में, अरे यार 2 किलो गया, इतना अच्छा गुलाब जामुन था कल का, पता नहीं क्या हो गया। लैटरिन में आदमी आता है ना तो कभी सोचता नहीं है, तुरंत बाहर निकलता है वहां से। तो जो गंदा हम छोड़ते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते, अरे हमारा गुड़का पीने का रह गया, मैं सब कुछ पिया था, लेकिन मेरे को एक रशिया का वोडका पीने का था, लेकिन अभी हरे कृष्ण में आया ना दिन क्या कर, हाँ स्कॉच मिलती है यहाँ पर, ना विस्की मिलती है, कुछ नहीं मिलता, चाय तक देते नहीं। लेकिन जो प्रसाद खाते हैं ना हम लोग, बहुत बढ़िया प्रसाद। मैं कहता हूं मैं तो साउथ इंडियन हूं, और हम एक टाइप का प्रसाद घर में खा लेते, खाना अन्न खाते थे। हरे कृष्णा में आने के बाद में हर दुनिया का, हर देश का, हर शहर का प्रसाद खाया हमने।
हरी बोल,
कोई कमी नहीं है। आपने मांस छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास 50 देश का अलग अलग वैरायटी मेन्यू अवेलेबल है। किसी भी देश में जाओ, हर देश में रेस्टोरेंट है गोविंदा, और बेस्ट फूड मिलता है वहां पर। बहुत सारे लोग वर्ल्ड ट्रेवल करते ना, तो इस बार मुझे में खाना खाते हैं, नॉट बिकॉज दे आर वेजिटेरियंस, दे लव दैट फूड विच इज कुक्ड इन टेम्पल ऑफ हरे कृष्ण। पूरा वर्ल्ड जो है वो हरे कृष्णा के प्रसाद के लिए फेमस है। तो ऐसा मत समझो कि हमने कुछ छोड़ दिया है तो हमने सब कुछ खो दिया है। क्या पाया? कुछ नहीं पाया, ये मत समझो। इतना सा खोया है, इतना सारा पाया है हमने, इसलिए छोड़ते नहीं उसको। नहीं तो अगर बहुत सारा खो दिया होता और कुछ यहां मिलता नहीं था, तो मैं मूर्ख नहीं वहां पर कंटिन्यू करने के लिए। मैं छोड़ दिया होता उसको, कभी का जा चुका होता वापस, है ना। मैं भी व्यवहार हूं ना, अगर मैं कुछ त्याग कर रहा हूं, और मेरे को अच्छा लगता है मांस खाना, लेकिन मैं त्याग कर रहा हूं उसको, लेकिन मैं अभी भी त्याग कर ही रह रहा हूं। आप बोले क्या पाया आपने? कुछ भी तो नहीं पाया आपने, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं बहुत होशियार आदमी हूं। मेरे को लाभ नहीं होता है तो मैं वहां पर कंटिन्यू नहीं करूंगा, लेकिन अभी भी 28 साल से कंटिन्यू कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मुझे लाभ ही लाभ हो रहा है, कंटिन्यूअसली आई एम गेटिंग बेनिफिटेड, दैट इज व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग इन टू हरे कृष्णा। आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि जीवन क्या है ना, इसका मतलब हरे कृष्ण ने हमको सिखाया, व्हाट इज लाइफ और लाइफ, हाउ टू लिव लाइफ सक्सेसफुली, वी हैव लर्न्ड इन हरे कृष्णा ओनली। एंड द बिगिनिंग ऑफ हाउ टू लिव सक्सेसफुली वी लर्न बाय ईटिंग प्रसाद। आई वेंट टू ईट प्रसाद ओनली देयर एक्चुअली। हरे कृष्ण छोड़ो यार, जब बाद में करेंगे, पहला फीस्ट कभी बताओ। फर्स्ट टेल मी व्हेन द संडे मॉर्निंग को 9 बजे फीस्ट होती है, तो बराबर हॉस्टल से हम लोग निकल के 7 बजे निकल के 9 बजे पहले वहां पर हाजिर रहते। 15 आइटम्स, आज एकादशी है ना, मैंने पहली एकादशी को बताया, उन्होंने एकादशी करना है अभी, कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस्कॉन मंदिर में आ जाओ, एकादशी के दिन बड़ा फिस्ट होता है। केवल 15 आइटम होते, ज्यादा नहीं। उसमें आपको आलू का मिलेगा, कद्दू का मिलेगा, फ्राइड सिंगदाना मिलेगा, और आलू के पापड़ मिलेंगे, और क्या क्या मिलेगा, साबूदाना की खीर मिलेगी, साबूदाना वड़ा मिलेगा। एनीवे अभी आपको टेंप्ट में खाऊंगा, खुद जाके खाओ। उन्होंने कहा कि आप कुछ बात करो, मंदिर में आ जाओ, उपवास करो, और मंदिर में जो बनता है वो खाओ, और भर पेट खाओ, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताऊं, मेरा पहला उपवास मेरे को अभी भी याद आता है। इतना सब करने के बाद भी मैं बिस्तर पर पड़ा रहा कंबल लेकर, कमजोरी की वजह से, बिकॉज ऑफ वीकनेस, आई कुड नॉट बेयर दैट। चावल चावल नहीं, चपाती नहीं, तो कैसे खाएंगे ऐसा। लेकिन इस्कॉन के एकादशी के प्रसाद पे मेरे एकादशी का व्रत चलता रहा, ये यार भूलना मत। आज मैं नहीं सब ऐसा व्रत करता हूं, पहले जैसा मैं अच्छा सा व्रत करता हूं, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि हर तरफ से सहायता मिली। व्रत भी करना है, या धोती कुर्ता पहनने के लिए भी, तिलक लगाने के लिए संकोच नहीं था कुछ, क्योंकि इसमें आनंद था। अगर आनंद नहीं है तो लोग क्यों करेंगे उसको, तिलक लगा के क्यों घूमेंगे, क्या जरूरत है। अभी देखो मैं डॉक्टर हूं, मेरी इतनी बड़ी चोटी है, कुछ लोग हंसते होंगे, बट आई डोंट केयर, व्हाई आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम हैप्पी इन बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। इफ आई एम नॉट हैप्पी आई विल बी शाय, वो क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे। हमारे सॉरी नाम की बहुत लंबी चोटी है, आई डोंट केयर, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी इन वॉट एवर आई एम। तो आप लोग भी ऐसे हैप्पी हो सकते हो, केवल आपको एक कल्चर अपनाना है अपने जीवन में। प्रभुपाद जी की हमारे लिए भेंट है, इज नॉट जस्ट गिवन बुक्स टू यू, इज गिवन अ कल्चर ऑफ लाइफ, एंड नॉट ओनली हाउ टू लिव हैप्पीली बट हाउ टू डाई हैप्पीली ही हैज टॉट अस। इट्स समथिंग कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग, वी हैव आर्ट ऑफ लिविंग ऑल्सो, आर्ट ऑफ डाइंग ऑल्सो, बोथ थिंग्स वी हैव इन हरे कृष्ण। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कैसे मरा जाता है ये प्रभुपाद जी ने सिखाया, इसी कमरे में दिखाया। लास्ट मोमेंट तक है ना, आप देखे ना, वो क्या उनके शरीर में कोई मांस भी नहीं है, केवल हड्डी और चर्म है बस। उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था, फिर भी लास्ट मोमेंट तक वो श्रीमद् भागवत का अनुवाद करते रहे डिक्टाफोन के अंदर। वो क्या देखा आपने, वो पकड़ा डिक्टाफोन और प्रभुपाद जी ब्रह्म सम्मोहन लीला का अनुवाद कर रहे हैं। सच अ ग्लोरियस लाइफ। उनका वजन इतना कम हो गया था, खाना पीना सब छोड़ दिया था, लेकिन आखिरी दम तक उन्होंने सेवा किया और भगवान का नाम लेते हुए। उनका मृत्यु कैसे हुआ पता है, उनके गुरु का चित्रपट सामने था उनके, सब भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे और अपने गुरु के चित्रपट को देखते हुए आंसू बहाते हुए वो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस। भगवान ने क्या बताया, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो व्यक्ति मरते समय उस क्षण में मेरी याद करता है, स्मरण 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 मुक्त्वा कलेवरम, शरीर को छोड़ते समय जो मेरी याद करता है वो मेरे पास पहुंच जाता है। अगर भगवान ने वचन कहा है तो निश्चित रूप में आज प्रभुपाद जी कृष्ण के साथ होंगे, क्योंकि उन्होंने यहां का शरीर छोड़ते हुए उनकी याद किया था, रोते रोते उनकी याद करके उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो ही हैज टॉट अस हाउ टू डाई एंड ऑल्सो ही हैज टॉट अस हाउ टू लिव। अगर हम सीखेंगे हाउ टू लिव देन यू विल नो हाउ टू डाई। इफ यू डोंट नो हाउ टू लिव देन हाउ कैन यू डाई परफेक्टली। प्रभुपाद इज गिवन परफेक्ट साइंस टू अस। मैं सबको आपको विनती करता हूं, हाँ मैं यहां पर इस्कॉन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर भक्ति का प्रचार कर रहा हूं। क्या आप लोग भारतवर्षी हो, भारत में जन्म लिया आपने, अपना जन्म बहुत पुण्यवान जन्म है और हमको शर्म आनी चाहिए अगर हमने गीता नहीं पढ़ाया था, तो काहे के हिंदुस्तानी हम लोग, वाई वी शुड कॉल अस हिंदुस्तानी। यहां पर धर्म का प्रचार सब जगह का है, बाइबल का भी है, कुरान का भी है, तो धर्म को जानो, क्या हमारा धर्म क्या बोलता है, मजहब क्या सिखाता है, मुसलमान का धर्म क्या सिखाता है, क्रिश्चियन का धर्म क्या सिखाता है, उसको सीखो। उसके लिए मनुष्य जन्म दिया है। कुत्ता बिल्ली गीता नहीं पढ़ सकते हैं, बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, और अगर नहीं पढ़ने को आता तो जिसको पता है उसको पढ़ सकते, उसको पढ़वा सकते हो, उससे सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अनपढ़ हो या बहुत गरीब हो, नो प्रॉब्लम, और सीखने का है तो सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे मंदिर में एक ऐसा भक्त है जो बिगाड़ी था, बिगाड़ी बिल्डिंग काम करते हैं ना बिल्डिंग, उसके अंदर वो फावड़े से काम करता था। वो व्यक्ति एकदम अनपढ़ था, अंगूठा छाप, वो बिगाड़ी व्यक्ति आज उसने सेंटर खोला है बारामती में, उसके अंदर 60 बीटेक एमटेक के स्टूडेंट्स उसके बिल्डिंग में रहते हैं और उनको गाइड करते हैं, वो किताब और रोचक करते हैं। तो आप कैसे बोल सकते कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं? ऐसे कितने लोग हमारे मंदिर में जो एकदम अंगूठा छाप है लेकिन गीति वर्शिप करते हैं, ब्राह्मण फर्स्ट क्लास बने हुए, प्रवचन करते हैं गीता के ऊपर सुन के। इमेजिन, इतना सारा परिवर्तन प्रभुपाद जी ने उनको जीवन में दिया है, अपग्रेड लाइफ को, इट्स अ लाइफ अपग्रेडेशन प्रोग्राम। मैं आपको खाली बता रहा हूं कि अपने आप को पहचानो कि आप लोग क्या हो और क्या शक्ति है आपके अंदर, और वो शक्ति को जानना जान लो और उसको लाइफ में उतारो। हम सब लोग आत्मा हैं भगवान के अंश, और भगवान के पास जाना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, और ये उद्देश्य प्रभुपाद जी ने हमको समझाया है, इसलिए हमारा जीवन बदल गया है। चलो प्रभुपाद की जय। हे कृष्णा का नाम लो, गलत चीजों को छोड़ दो। हम कुछ लोग यहां 65 के हो गए हैं, कितना टाइम बचा है जीवन में, हाउ मच टाइम, कभी घंटी बजेगी ना जाना पड़ेगा तुरंत। बोले वेट 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 रहा बेटी की शादी करने, नो सर गेट आउट तुरंत, कोई किसी के लिए वेट नहीं कर रहा, घंटी बजेगी मृत्यु की ना भागना पड़ेगा यहां से। फिर कभी कुत्ता बनेंगे बिल्ली बनेंगे और जन्म में क्या जन्म लेंगे क्या मालूम, अभी टाइम है। अगर 5-10 साल भी है टाइम है, करो भगवान का नाम का जप करो। वैसे भी रिटायर हो गए हैं 65 के बाद में और बीमार भी हो गए हैं, क्या फायदा है जीवन का, वैसे भी क्या लाभ हो रहा है, कम से कम ये लाभ कर सकते हैं। लोग बोलते हैं ना अरे भगवान का भजन ना एंड में करो, अभी तो कम से कम एंड आ गया ना, अभी करो ना, और कभी एंड का वेट करेंगे, और कौन सा एंड की एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 कौन से एंड का वेट कर रहे हैं, एंड कभी भी आ सकता है, अभी करना चाहिए। ये जीवन अभी सब कुछ अगर स्थिर है, बुद्धि सही है, शरीर भी ठीक है, अभी भी दिखता है, आंख से कान में सुनाई पड़ता है, कुछ भी थोड़ा शरीर चलता है इधर उधर, तब तक कर लो। जब हाथ पैर गिर जाएंगे तब कुछ नहीं कर सकते, उस समय कुछ काम नहीं आएगा, केवल भगवान का नाम ही काम आएगा। पता नहीं जंगल में अगर टिम्बकटू में मरेंगे तो क्या होगा, नो वन नोज व्हाट विल हैपन। अभी मौका है, अभी भगवान आपको बोल रहे हैं आ जाओ मेरे पास, प्लीज कम, आई एम वेटिंग फॉर यू माई चाइल्ड, प्लीज कम। तभी जाओ भगवान के पास, उनका सहारा ले लो। जो लोग जवान हैं वो भाग्यवान लोग हैं, पूरा जीवन अगर जीना है तो अभी से चालू करो। कौमारत आचरित प्रज्ञा, 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू करो तो एंड में भी कर सकते हैं, जवानी में करो तो जीवन भर कर सकते हैं। जो अभी सीखते हो जवानी में वो एंड तक कर सकते हो, बुढ़ापे में बड़ा मुश्किल हो जाता है, दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, याद नहीं रहती है, हजम नहीं होता है खाना, पैर दुखता है, तो सारा शरीर में ध्यान रहता है क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर दुखता है, उधर दुखता है, तो क्या भजन करेंगे। फिर भी करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए, वहां के भगवान से प्रार्थना करो, प्रभुपाद से प्रार्थना करो, बचाओ तो बचा लेंगे आप, ठीक है। अभी भी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, माला नहीं है खरीद लो, ये जगह बॉम्बे में कफर मार्केट में माला नहीं मिलती है, याद रखना, बड़े बड़े मॉल के अंदर माला नहीं बेचते हैं, यहां मिलती है माला, हमारे मंदिर में मिलती है। तो जीवन को सुधारने का रास्ता है उसका साहित्य इधर मिलता है, और जीवन को बिगाड़ने का साहित्य जो है वो मॉल में मिलता है। इसलिए मॉल में मत जाओ, मंदिर में जाओ, इसी मॉल में जाके खरीदो, बुक किताब खरीदो, माला खरीदो, झोली खरीदो, भगवान का फोटो खरीदो, किताब पढ़ो, उसको जीवन में उतारो, ठीक है। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा।